आएंगे, कौन रक्षा करेगा? ऐसे ऐसे आ जाने लोग मित्र भुजाओं के घेरे में हम आ जाएं, बोलते हैं है, जार देखे तारे धोरे दे कोल, जिसको देखते हैं उसको पकड़ करके आलिंगन करते हैं महाप्रभु और उसको बोलते एक बार हरि बोल बोलो है, गौर प्रमानंदे हरि हरि, सब लोग हरि बोल बोलेंगे, हरिनाम संकीर्तन करेंगे, महाप्रभु और कुछ मांगते नहीं हैं, धन दौलत रुपया पैसा प्रतिष्ठा फूल की माला चंदन तिलक कुछ भी महाप्रभु चाहते हैं, बोलते नहीं, एक बार तुम लोग सभी लोग हरिनम हरि हरिनाम संकीर्तन करो, हरि बोल बोलो, बस उनके घेरा बहुत बड़ा है, इतना उनका घेरा है, उनके हाथेली के अंदर आ जाए कोई फिर उनका रक्षक हो गया, अब गिरने का डर नहीं, वो चाहे आकाश में चले जाएँ पाताल में चले जाएँ विश्व ब्रह्मांड के किसी कोने में चले जाए, वो संकीर्तन करेंगे और सबको कराएंगे, सबको शक्ति देंगे और सबको भी समर्थवान बनाएंगे, इतना शक्ति होता है। तो आज के दिन में इस शक्ति की कृपा की वर्षा हो रही है सर्वत्र, ऐसा नहीं पृथ्वी के कोने कोने में आज कोई देश प्रांत गांव समाज बाकी हो कि जहां आज कीर्तन नहीं हो रहा है। इस कीर्तन यज्ञ में जो अपने को आहुति देंगे, क्या कीर्तन यज्ञ, घी चाहिए लकड़ी चाहिए और यज्ञ कुंड बनाना पड़ेगा, नहीं, विशाल यज्ञ कुंड है, ये जीवा है कलची चम्मच, जिसमें से हैं ये वाणी रूपी इस संकीर्तन रूपी ओ घी मिला करके यज्ञ का सामग्री ये कुंड में आहुति दो, हरे कृष्ण बोलो इसमें सुनाओ, बस इसी से महाप्रभु खुश। ये यज्ञ कुंड यज्ञ भूमि बना करके हैं, पहले यज्ञ भूमि बनाया था सत्य युग के प्रारंभ में, महाराज ने गीता जी प्रकाश किए हैं उसमें पहला श्लोक में बतलाया, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता जुसव माम कहा पांडव शैव कि मुकर्वत संजय हैं, बता रहे हैं धर्म क्षेत्र, कौन ने धर्म क्षेत्र बनाया, यज्ञ भूमि कौन बनाया, गुरु महाराज जी ने हैं, सत्य युग में बनाया गुरु महाराज जी ने, कैसे यज्ञ क्षेत्र धर्म क्षेत्र कैसे, ओ हल जोतने लगा, काटा कंकड़ कूस ये सब बीन करके साफ करेंगे भूमि, तब तो यज्ञ भूमि बनेगा, तो क्या करने लगे, हल चलाने लगे, इतने इंद्र आया आकर पूछते महाराज क्या कर रहे हैं, तो मैं यज्ञ भूमि बनाऊंगा, तो किस लिए, इस भूमि में धर्म की खेती होगी अर्थात धर्म के बीज अंकुरित होगा, जहाँ जाने से धर्म अपने आप हृदय में आविर्भूत हो जाएगा, वो भूमि मैं बनाऊंगा। फिर 10 मिनट बाद आ गए, महाराज क्या कर रहे हैं, तो मैं यज्ञ भूमि बनाऊंगा। फिर 5 मिनट बाद आ गए, महाराज क्या कर रहे हैं, क्यों इंद्र को डर लग गया, यदि ये यज्ञ करना शुरू कर दिया और हमारा इंद्रत्व पद चला जाएगा, क्योंकि बड़े हो जाएंगे और मैं छोटा हो जाऊंगा, इससे उनका अंदर जिलास है, ईर्ष्या है, देश है, देवता है, छोटे बुद्धि, क्योंकि बड़े बड़े भोगी लोग सेक्रेटरी लोग और प्रधानमंत्री लोग इन लोग के अंदर में होता है कि हमारा पद न चला जाए, कितनी चेष्टा करते हैं। तो आज इंद्र ऐसे चेष्टा करने लगे मेरा पद न जाए, इंद्र ने बार बार पूछा क्यों, साधक लोग यदि क्रोध करते हैं क्रोध के द्वारा अपना तपस्या जल करके उसी समय खाक हो जाएगा, उनका क्रोध करना मात्र ही जितने तपस्या किया भजन किया सब नष्ट हो जाएगा, तो क्रोध तो नहीं करना चाहिए, और यदि ये क्रोध कर देते गुरु महाराज तो इनका सर्वनाश हो जाएगा, फिर ये यज्ञ भूमि बना नहीं सकते, भजन कर नहीं सकते, धर्म क्षेत्र बना नहीं सकते, क्यों, धर्म क्षेत्र में तो धर्म की खेती होगी, अधर्म कहाँ से आएगा, क्रोध तो अधर्म है, इसलिए इंद्र बार बार उलाहना देने लगे, एक बार बोला दो बार बोला तीन बार बोला करते 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 100 बार बोलने लगे, अब हम लोग दो बार तीन बार पूछते तो एक बार पूछते तो हम बिगड़ जाएंगे, किंतु गुरु महाराज देखा मैं बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूँ, मैं बिगड़ूंगा नहीं, मैं तो अपना ठीक काम करूँगा, कभी भी चित्त अशांत नहीं करूँगा। तो आज हम लोग जैसे ये अभी व्रत करने जा रहे हैं महाप्रभु जी के, किसी भी अवस्था में चित्त के चांचल्य उपस्थित होए तो गया व्रत, तो क्या करते गुरु महाराज जी, बिल्कुल एक सवार पूछा इंद्र ने, एक सवार ठीक जवाब दिया, इंद्र देखा कि बड़ा तपस्वी है, मैं यहाँ जाऊँगा तो अभिशप्त होकर के मैं मर जाऊँगा, तो देखा गया कि गुरु महाराज बिगड़े नहीं, उन्होंने देखा बापरे मेरा डर लग गया, वो छोड़ छाड़ करके भाग गए, फिर यज्ञ भूमि बनाया और वहाँ पर धर्म साक्षात प्रकट हुए, भगवान प्रकट हुए। बोले इस भूमि में कुरुक्षेत्र गया गंगा प्रभास पुष्करणी च, कुरुक्षेत्र गया गंगा और प्रभास पुष्कर ये पांच तीर्थों का सबसे बड़ा भारी धर्म का क्षेत्र है। सबसे प्रथम है कुरुक्षेत्र। इस कुरुक्षेत्र में कोई आएगा, एक बार स्पर्श करेगा, स्नान करेगा, दर्शन करेगा, उनके हृदय में धर्म की बीज अंकुरित होगा, निश्चित रूप में होगा। इस कुरुक्षेत्र में अब इससे धर्म क्षेत्र बना। ऐसे चैतन्य महाप्रभु जी ने बताया, यदि इस क्षेत्र को धर्म क्षेत्र बनाना है तो क्या, कलियुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। एकमात्र कलियुग हरे नाम हरे नाम हरे नाम इव केवलम कलौर नास्तेव 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 गतिरन्य था। त्रिसत्य करके प्रतिज्ञा करके बतलाया कलियुग में केवल मात्र हरिनाम हरिनाम और हरिनाम ही सार है। तो इस क्षेत्र धर्म का क्षेत्र हो जाएगा। इसको कोई स्पर्श करेगा, दर्शन करेगा, कोई इनकी इनके साथ में आ जाएगा, वो भी उनके अंदर में भी धर्म का बीज अंकुरित हो जाएगा, वो भी भजन करने लग जाएंगे। नहीं तो साधु संत तो क्या करते हैं, जगों को मिठाई बांटते हैं ना, कपड़ा बांटते हैं ना, कि प्रतिष्ठा देते हैं, क्या करते हैं। एकमात्र इस भूमि को पहले क्षेत्र बनाया भगवान के विचरण भूमि है, और वो भी चेष्टा करके नहीं, अहितु कृपा प्रभु की, केवल मात्र हरिनाम संकीर्तन करने की चेष्टा किया। जगत वरिण्य जगत गुरु जगत पूज्य हो गए, भगवान के समान पूजे जाते हैं। तो इसलिए इतना आसान इतना सरल सुलभ सुजोग, इसमें भी यदि हम लोग हरिनाम कीर्तन न करें तो हमारे जैसा दुर्भगा और पाषंडी और पापी दुराचारी कौन होगा। इसलिए बता रहे हैं वरजान लंबी सड़क भुजो, वो दो हाथ नहीं है, चार हाथ नहीं है, छह हाथ है। कैसे हैं, हमें ऊपर से नीचे तक कोई भी हमारे ऊपर विपत्ति देकर के हमारा कुछ बिगाड़ देंगे, नहीं बिगाड़ सकते। सबसे महाप्रभु जी रक्षा करेंगे, चारों दिशाओं ऊपर नीचे सब तरह से हो हमारा रक्षा करेंगे, हमें कृपा करेंगे। बहुधा भक्ति रसाभिनर्तक, विभिन्न प्रकार के भक्ति, नौ प्रकार के भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास सुख आत्मनिवेदनम इति पुंसार पिता विष्णु भक्ति से नवलक्षणा क्रियते भगवती अध्याय तन्मन्ने अधिम उत्तमम। उत्तम नौ प्रकार की भक्ति। महाप्रभु बोलते भाई इतना करने की कलयुग में सामर्थ्य नहीं है, कहाँ पानी ले आएगा, कहाँ फूल ले आएगा, कहाँ घी इकट्ठे करेंगे, कहाँ मंदिर बनाएंगे, कहाँ पूजा करेंगे, मन को स्थिर करेंगे, ये होगा नहीं। क्या करो, केवल क्या करो, करे दूसर निधे राज्य नस्ती जी को महान गुण कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संघ प्रण ब्रजित। कलयुग में दोष ही दोष, दोष ही दोष, दोष ही दोष, कलयुग में कोई गुण नहीं है। तो क्या एक ही गुण महान कीर्तना देव कृष्ण से, कृष्ण का नाम कीर्तन करो, और कुछ करने की जरूरत नहीं। ट्रेन में, बस में, पानी में, आकाश में, घर में, बाहर में हैं, सोते हैं, खाते समय, पीते समय हरिनाम कीर्तन कीजिए। न देश नियमस्तस्मिन न कालो नियमस्त था, न चिचात ग्रहणा दो तन नाम ग्रहणादि भी। कैसी व्यवस्था में हरिनाम संकीर्तन करो, उस संकीर्तन के प्रभाव से निश्चित रूप में जीवों का कल्याण हो जाएगा। और कोई चारा नहीं है, जरूरत नहीं नहाने की, जरूरत नहीं धोने की, जरूरत नहीं कुल्ला दातुन करने की। अपवित्र है तो अपवित्र का पानी दूर कर देगा, पानी में सामर्थ्य है, पानी तो ऊपर से धो देगा, हृदय के पवित्रता कौन दूर करेगा। इसलिए क्या बताया, अपवित्र पवित्र बा सर्वावस्थान गतो पीबा जस्मर एक कुंडलिकाख्यम स्वाह्य अभ्यंतर सूची। बाहर भीतर यदि पवित्र करना है, सूची करना है, तो क्या करो, कुंडलिकाख्य जो कुंडली कमल नयन हो प्रभु के नाम कीर्तन करो। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, एकमात्र इस कमल नयन हरि के नाम कीर्तन के अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है। ओहो हम परम सौभाग्यवान, इस कलयुग में हमारा जन्म हुआ, और विशेष करके महाप्रभु जी के भक्तों के सानिध्य में कितने दयालु हैं। लाख लाख जन्म के यदि दोष उसका फल हमें देना, हम झेल नहीं सकते, मर जाएंगे, दब जाएंगे। क्या अवस्था, क्या क्या नहीं किया, अरे इस जन्म में क्या नहीं किया सोचो। बोले बोले मैं झूठ बोला नहीं, बेईमानी करा नहीं, किसी को दागाबाजी किया नहीं, अरे किसी को कुछ करा नहीं, तो बोले धर्मात्मा हूँ मैं, किस बात के लिए। अभी जो 40 साल 50 साल 30 साल 20 साल बीत गया, इस समय के अंदर में प्रभु ने तुमको ये शरीर दिया है, बोलते दूसरे के वस्तु को खर्च करने के अधिकार नहीं है, और दूसरे के वस्तु को दूसरे को दान करने के अधिकार नहीं है। तो प्रभु ने तो ये शरीर दिया और मैंने क्या करा, अपने भोगों में लगा लिया इतना दिन, और इसको किसी को दे भी दिया, कितने लोगों को दे दिया। तो दूसरे के वस्तु को हमने खर्च किया दान या किसी को दे दिया, तो हमने क्या करा, इसको बेईमान बन गए। ये जो बेईमानी करा उसका फल कौन देगा, भोगेगा हैं भाई। किसी ने आपके पास 1,00,000 रुपया रख दिया, आप यदि उसको यदि खर्च कर देते हैं तो अभी आप दंड के भागीदार, यदि किसी को दे देते हैं तो भी दंड के भागीदार। तो हमने तो इतना दिन खर्च कर दिया, अब हमारा क्या होगा, इसलिए हम तो इसके भागीदार दंड मिलेगा। इसे बताते हैं वो भी तो प्रभु आपको क्षमा कर दिया, नहीं ठीक है कोई बात नहीं, बच्चा है अज्ञानी मूर्ख है सर समझते नहीं, अब तो चेत जाए, अब तो हम बर्बाद न करें, अब हम गुरुवाष्णव कृपा से जिस दिन नाम मिला, जिस दिन सुनने को मिला, उसी दिन से हम नाम कीर्तन करने लग जाए। प्रभु आपने दिया, दे तो यीशु बिनु है तो सनेही, स्नेह परवश होकर के 84,00,000 प्रकार जोने भटक रहे थे, प्रभु कृपा करके आपने ये तन दिया, आपकी कृपा है हेतु की। नहीं तो पशु पक्षियों में हाथी घोड़ा बैल सुअर कुत्ते गधे में भोगी भोगते थे, कोई विवेक तो था नहीं। आपने बड़ी कृपा की प्रभु, बहुत कृपा किया, अब मैं बर्बाद नहीं करूँगा, आपकी नाम कीर्तन करके आत्मज्ञान लाभ करके और बैक टू गार्डन बैक टू होम सदा के लिए ही मैं रिफ्यूजी होकर के आया, आपके चरणारविंद में पहुँच जाऊँगा। ऐसे प्रतिज्ञा करके जीव जब संकीर्तन करने लग जाते हैं तो उनका प्रभु तो दंड भी नहीं देते। अरे ऐसा नहीं, आखिरी दिन मरते जा रहे हैं तब भी एक बार हे गोविंद राख शरण अब तो जीवनहारी, एक बार भी गोविंद नाम उच्चारण कर लिया, कृष्ण नाम उच्चारण कर लिया, प्रभु तभी तो उद्धार कर देंगे हैं। किंतु हाय हमारा होश नहीं होता, कलयुग पावनावतारी गौर सुंदर कितना हमारे लिए सुजोग कर दिया। इसे बताना है भक्ति रसा भी नटक, समस्त प्रकार के एक हरिनाम करने से समस्त प्रकार भक्ति आसानी से हृदय में आ जाएगा और नित्य करने लग जाएगा, समस्त सद्गुण आ जाएगा, सद्विचार आ जाएगा, पढ़ने की लिखने की शास्त्रों को पोथियों को कितना पलटते जाएंगे, कितना वो पढ़ते जाएंगे, अनुभव नहीं होगा और हृदय में आविर्भूत नहीं होगा। किंतु एकमात्र इन हरिनाम करने से, और महाप्रभु ने एक आदेश दो आदेश दिया, क्या उनका मुख्य आदेश है, निरंतर कर नाम संकीर्तन आर कर वैष्णव सेवन और चिराते पावे तुम्हें कृष्ण प्रेमधन। एकमात्र नाम संकीर्तन करो और वैष्णवों की सेवा करो बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, हैं इतने पोतियों को लादने की जरूरत नहीं। महाप्रभु ने पोतियों को क्या किया, अभी बाल लीला में आएगा, डोरी बांध दी बिल्कुल। पहले तो बड़े पढ़ुआ थे, पढ़ने की बड़ा शौक, सबको पढ़ाते थे, अब सबको पोती पर डोरी बांध दिया, बोले बाबा ये होगा नहीं, कितना वजन ढोएंगे, बांध करके रख दिया। क्या करे, बोल बे सब कृष्ण बोलो, कृष्ण नाम संकीर्तन करो और जारा देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश हमारा गाय गुरु हो या तारा ये देश। अरे ये कौन सी बात है, सबको देखो कृष्ण नाम कीर्तन करो, सबको कृष्ण कथा सुनाओ और गुरु बन जाओ, नहीं यहाँ गुरु मरने का तात्पर्य क्या, गुरु होइया अर्थात ये जिम्मेदारी लो, मैं कृष्ण नाम करूँगा दूसरों को कराऊँगा, दायित्व लो, भूलूँगा नहीं। ये महाप्रभु जी के आदेश हैं, उपदेश हैं। ये पोथी पढ़ते पढ़ते झुक गया किंतु विवेक नहीं हुआ, अनुभव नहीं है, क्या होगा। इससे महाप्रभु जी ने पोथी टोती बांध के और कहाँ कर दिया, गंगा जी में फेंक दिया, गंगा जी में बह के चला गया। महाप्रभु जी ने अपने जीवन में कोई ग्रंथ नहीं लिखा और किसी को बोला नहीं, कलयुग में इतना पांडित्य बुद्धि नहीं है, सूक्ष्म बुद्धि नहीं है कि विचार करके निकाल लेगा क्या इसका रहस्य है, कहाँ क्या लिखा हुआ है कोई कौन पढ़ेगा इतना अथा शास्त्र ग्रंथ। किंतु संप्रदाय रक्षा के लिए जरूरत है, हमारे गोस्वामी वर्गों ने इसको संकलित करके रख दिया महाप्रभु के मनोभाव को, नहीं तो आज हम महाप्रभु की मनोविष्ट सेवा, किंतु यदि हरिनाम नहीं करेंगे वो भी नहीं समझ पाएंगे, ये भी बात है। वहाँ भी प्रतिज्ञा करके रख दिया, हरिनाम कीर्तन जो नहीं करता उसके निकट कोई भी ग्रंथ प्रकाशित नहीं होगा, महाप्रभु के आदेश नहीं पालन करते हैं तो महाप्रभु की संपत्ति उसको अधिकार ही नहीं है वो। इसलिए भाई रसा भी नट कह, और रस हृदय में आविर्भूत होगा, नित्य करेगा कब, जब आप हरिनाम संकीर्तन करेंगे, इसके पहले नहीं होगा। जयति जयति देवा श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र, जयति जयति श्री कीर्ति स्तस्य नित्य अपवित्रा, जयति जयति वृत्तस्तस्य विशेष मूर्ते, जयति जयति नित्यं तस्य सर्व प्रियाणाम। देखो वही बात बोल रहे हैं बार बार, जयति जयति, ओहो आप जय युक्त हो, जय युक्त हो। भाई मेरे को नहीं, अकेला ये विश्व को आप जीत लीजिए। विश्व के जीव आपसे विमुख है, ये संसार को आप जीत लीजिए तभी तो आपका जय होगा। ये जीव पराजय हो चुका है, अर्थात पराजित है, दूसरे के माया के द्वारा बंधे हुए हैं और बिना नकेल का घूमते रहते हैं। ऐसे माया रचाया, अरब इराक ईरान कंट्री में जाता है तो कहाँ उनका मन है, बंधे हुए कहाँ, वही खूटे में, खूटा भी नहीं है, पता नहीं क्या है वो मन, वहाँ घूमता है जो चार चौकड़ी की दीवार है, दीवार है वहाँ ही घूमता है। हाँ, यहाँ आया तो दिल्ली देख रहा है, कोई विलायत अमेरिका देख रहा है, कोई कोई कलकत्ता देख रहा है, क्यों वहाँ खूटे में बांधा हुआ है बिना नकेल का और घूम रहे हैं उसके चारों तरफ। बोलते ऐसे जीवों को आप जीत लीजिए तब तो आपका जय जय हो, जय हो प्रभु। और क्या है, कृष्ण चैतन्य प्रभु आप जीतो। और क्या, जयति जयति कीर्ति शोषक नित्य पवित्र, आपकी कीर्ति नित्य पवित्र है। ऐसे पवित्र हैं, ऐसे पवित्र है, एक बार आपका नाम स्मरण कर लिया, नहीं कर लिया, आप खुद जा करके उनको जय करके जीत करके बांध करके ला करके अपने पास रख देते हैं, नहीं छोड़ देते हैं। ये नहीं कि बांध करके पास में रख लिया, नहीं छोड़ दिया, जाओ क्यों, तुम भी जा करके सबको जीतो, सबके हृदय को जीतो, सब कुछ प्रेम धन दे दो, सुखी हो जाए जीव, भूल जाएगा सब। सुख के लिए ही तो जीव समस्त कार्य करते हैं। ऐसे बोले जयति जयति वृत्त स्वच्छ विश्व समूर्ते, ये विश्व के जगत में साक्षात भगवत मूर्ति के समान और जो उनके वृत्त है वो भी संपूजित होकर के जगत के जीवों को जीत लेते हैं, सबके हृदय को। और क्या, जयति जयति नित्यं तस्य सर्वप्रियाणाम, ओहो सबके प्रिय आप बन गए और सब लोगों को नचा दिया, हल्का फुल्का हो गए, नित्य करने लगे लोग, दुख नहीं है, आनंद से नाचने लगे। जब भजन चला जाएगा, दुख चला जाएगा, तभी तो लोग नाचेगा, नहीं तो नाचेगा क्यों। इसलिए इस भजन को हटाने के लिए और कोई उपाय नहीं है, क्यों, कौन है, कृष्ण चैतन्य चंद्र, उनके कीर्ति, उनके वृत्त और उनके प्रिय व्यक्तिजन। आप दे चैतन्य प्रिय गोष्ठी विचारणे अशेष प्रकारे मो दंड प्रणामे, सबसे पहले मैं चैतन्य महाप्रभु के प्रिय जो गोष्ठी हैं उनके चरणारविंद में दंड प्रणाम करता हूँ। तय बंधो श्री चैतन्य कृष्ण चैतन्य महेश्वर नवद्वीप अवतार नाम विश्वंभर, इसके बाद मैं वंदना करता हूँ जो ईश्वरों के ईश्वर महेश्वर हैं, कौन, चैतन्य महाप्रभु, और जो नवद्वीप में आविर्भूत हुए हैं जिनका नाम विश्वंभर है, विश्व को भरण पोषण पालन करने का जिनके अंदर क्षमता है, नहीं तो आज विश्व को जोड़ने वाला कोई दूसरा शक्ति नहीं है, एकमात्र विश्वंभर के शक्ति से ही विश्व जुड़े हुए हैं। आज हृदय जुड़ा हुआ है, जाति पाति पूछे न कोई, जो हरि का भजे सो हरि का होए, कोई चीज देखा नहीं, विचार नहीं किया, ऊंचा नीचा विचार नहीं है। महाप्रभु जी आज यदि नवद्वीप धाम में कोई जाते मायापुर देखते हैं, राजा रंग का मंत्री और वो जो कोल सांताल भील मुंडा खसिया जयंतिया पहाड़ी गारो समस्त जाति, कितना प्रीति सब में हैं, ईसाई मुसलमान क्रिश्चियन हिंदू सब हैं एक साथ में नित्य कीर्तन कर रहे हैं, कैसे हृदय जुड़ा, किसने जोड़ा हैं, इसे दयालु और कौन होगा इसे बताना है। ऐसे जो विश्वंभर है वो उनकी जय युक्त हो, उनको मैं वंदना करता हूँ। আমার ভক্তের পূজা আমা হইতে বড় সেই প্রভু বেদে ভাগবতে কইলা দল, মহাপ্রভু বতলা রে মুসে মেরে ভক্ত কি পূজা অর বড়া হে, ক্যোকি হামসে আমারা ভক্ত অর দয়ালু হে, মে জো কুছ দেনা ভি নেই চাহতা। আমার ভক্ত লোক ক্যা কহতে হ্যাঁ, উস বাড় কো লেকর কে প্রেম কে বাড় কো লেকর কে কহাঁ কহাঁ পৌঁছ জাতে হ্যাঁ, এক এক কিন ক্যা, জেসে মধুমক্ষি ক্যা কহতি হ্যাঁ, কহাঁ জহরিল ফুল, কহাঁ আচ্ছে ফুল, कहाँ गंदे नाली का पानी, कहाँ तो मीठे की दुकान, शरबत जाके बैठ जाते हैं, सबसे मधु को ले लेते हैं, लेकर के खाल पी लेते हैं और पी करके अंदर रख लेते हैं और उड़ करके जाते हैं, जा करके उल्टी करते हैं अपने घोंसला में, उल्टी करके रख देते हैं। और क्या होता है, वो जगत के लिए सबके लिए वो जहरीली अब नहीं रहा, और गंदे नाली के पानी पी लिया वो भी नहीं रहा, और वो जो फूलों के मधु लिया पी लिया वो नहीं रहा, वो पीने के बाद जब उल्टी कर दिया अमृत बन गया, ये जगत के लिए अमृत है, वो जो पान करते हैं उनको कभी बीमारी दुख सुख दुख नहीं होता, ऐसे मधु है, उस मधु के द्वारा जगत का कल्याण होता है, ऐसे साधु संत महाप्रभु जी के भक्त कैसे मधुकर है, जहाँ जहाँ जाते हैं जिसके जिसके चित्तवृत्ति है उसको उठा करके ला करके भगवान के चरणों में लगा देते हैं, और वो लोग कैसे हो जाते हैं, और मधुकर होने से वो भी जीवन के लिए बड़ा प्रिय और आदरणीय बन जाते हैं, और वो मधु सबके लिए कल्याणकारी हो जाता है। इसलिए बता रहे हैं मुझसे भी मेरे भक्तों की पूजा बड़ा है। हेते के कोई लुआ गे भक्ति रवंदन हते हाथी कार्य सिद्धि लखन इष्टदेव बंदमोर नित्यानंद राय चैतन्य कीर्तिपुरे जहार कृपाय। इसे मैं सबसे पहले भक्त की वंदना किया, अब मैं समझता हूँ मेरा कार्य सिद्धि निश्चित हो जाएगा, निश्चित होगा, कोई चिंता की बात नहीं है। इष्टदेव वंदना करता हूँ नित्यानंद प्रभु का, जिनके कृपा से मेरा चैतन्य महाप्रभु की कीर्ति हृदय में स्फूर्ति होगा। क्यों? चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु आश्रय तत्व हैं और धाम स्वरूप हैं। ये शरीर का जो गठन है ये भी एक तरह से नित्यानंद प्रभु का ही कृपा है, और मन का जो शरीर है वो भी, आत्मा का शरीर वो भी, सभी बलदेव प्रभु से नित्यानंद प्रभु के कृपा से गठित है। धाम भी बलदेव प्रभु स्वरूप है। कृष्ण के छत्र विशान पादुका चामर व्यंजन वस्त्र अलंकार उनके श्रीअंग समस्त धाम सब कुछ बलदेव प्रभु हैं। ये जो गुरुपाद पद्म बलदेव प्रभु के अभिन्न प्रकाश है, दूसरा विग्रह है नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद भिन्न विग्रह है। इसलिए हम लोग नित्यानंद प्रभु की वंदना करते हैं। सहस्त्र पदन बंदो प्रभु बलराम जहाँ सहस्त्र मुखी कृष्ण जसुधाम महारत्र थुई जन महा प्रिय स्थानी जसनत्र भंडार श्री अनंत बदनी। बोले भाई भगवान कृपा करके अनंत भंडार, जस का भंडार, रत्न का भंडार सब कुछ नित्यानंद प्रभु के पास रख दिए हैं। आज हम लोग अभाग्यशाली हैं, ऐसे महाप्रभु के नित्यानंद प्रभु के कृपा पात्रों के सान्निध्य में गुरुपाद पद्म के आश्रय में हम लोग हैं। वो हम लोग ऊपर कृपा करें, हम लोग संपूर्ण रूप से गौर तत्व नित्यानंद तत्व को समझ सके। अभी हमारा ये कथा संध्या तक चलेगा, वैष्णव जवान सब लोग एक एक घंटा दो दो घंटा ये पाठ निरंतर करेंगे, ये पाठ टूटेगा नहीं, और पारायण चलेगा चैतन्य भागवत की महाप्रभु की लीला समस्त। अभी पुंडरीक प्रभु ये कुछ विदेशी लोग हैं थोड़ा सा अंग्रेजी में सुना देंगे, इसके बाद और भक्त लोग बारी बारी से पाठ करेंगे। हम लोग का कार्यक्रम है मंदिर सजाना है, विभिन्न प्रकार भोग राग तैयारी करना है, और सभी वैष्णवजनों के सेवा बटे हुए हैं। जितने हो सके आज बाहर तो निकलने का नहीं है, क्यों बाहर बहुत धूल रंग होली हो रहा है, इसलिए यहाँ समय दे सके हरिनाम संकीर्तन करें और कथा सुने, और जिन लोगों से सामर्थ्य है सेवा काम करेंगे। हैं संध्या तक हम लोग की चलेगा 4 बजे तक, इसके बाद संकीर्तन शुरू होगा, इसके बाद महाप्रभु जी के महाअभिषेक होगा, अभिषेक के बाद महाप्रभु जी कुछ जसो कीर्तन होगा। अब भक्त लोग अपने अपने हृदय के हृदय रूपी पुष्प को सर्वप्रथम गुरु के चरणों में देंगे, गुरुपाद पद्म उठा करके महाप्रभु जी के चरणों में देंगे, जिससे कि आज उस अनुराग के रंग से हम लोग भी रंग करके सदा के लिए ब्रजवासी बन जाएं। इसके लिए भक्त लोग अपने अपने हृदय रूपी पुष्प को चेष्टा करेंगे लेकर के गुरु के चरणों में देने की। तो सबसे हम ये प्रार्थना निवेदन करेंगे, आज कथा कीर्तन में विघ्न न हो, चलता रहे सेवा पूजा पाठ हम लोग की चले, जिससे कि हम गुरु के और महाप्रभु जी के सान्निध्य में आज रह सकें, हमारा चित्त तितर बितर होकर के इधर उधर नहीं जाए, नहीं तो थोड़ा इधर उधर हो गया फिर लोटा के लाना बड़ा कठिन है। और आज के ऐसा है अक्षय सरोवर से पानी बह रहे हैं, जो पी लिया वो तृप्त हो गए। आज के दिन ऐसा दिन है जिन लोगों ने इस कथा रस का थोड़ा भी आस्वादन किया, थोड़ा भी इस यज्ञ में आहुति दिया, सम्मिलित रहे, उनके चरणामृत पान किया, उस अनुराग के रंग से अपने को रंजित किया, आज वो जीवन सार्थक, ना जानी काल की भरोसा नहीं क्या हो जाए, कब तक ये शरीर रहे, किंतु नहीं गारंटी है। जो लोग महाप्रभु के इस संकीर्तन यज्ञ में सम्मिलित हुए हैं वो लोग इतना आसानी से उनकी इच्छा के बिना जा भी नहीं सकते, उनका बाल बका कोई कर नहीं सकता। बोलते हैं ना ये गले में डोरा बांध दिया, किस लिए? बोलते हैं आवारा नहीं है अब तुम मेरे हो, तुलसी तिल दे करके समर्पण कर दिया, दे ही तुलसी तिल देह समर्पिलूँ दया जानी ना छोड़ भी मोए। अब हमें छोड़ना नहीं, छोड़ेगा भी नहीं। क्यों? बांध करके रख लिया ना, गले में रस्सी देके गाय बैल को खोद करके आगे खूंटा बांध देते हैं ना, तो हमारे गले में पड़ गया ना रस्सी, बांध दिया ना। किसके साथ? एक श्रीमती जी के साथ, दूसरा कृष्ण के साथ, तीसरा महाप्रभु जी के चरणों में बांध दिया। किधर जाएगा? रास्ता नहीं जाने का। इसलिए गुरुपाद ब्रह्म महा दयालु, जिनके गले में एक कंठी नहीं है, कंठ में तो आवारा है, मालिक नहीं है, उसका रक्षा कौन करेगा? इसलिए तुलसी हार ना पर जे छार जमा लये बासो तारो, तिलक धारण ना करे जे जन की हबे तहार गति। जो लोग तुलसी के हार नहीं पहनता है तो निश्चित जमालय में उसका वास है, अभी भी जमलोक में है तो अभी भी जमलोक में है। और क्या है? नालय हरिनाम विधि तारो बाम पार पामर पाषंड मोती, जो हरिनाम नहीं लेता है विधि उनका उल्टा है, पामर पाषंड है, हृदय पत्थर के हैं, दुखी हैं, सब समय के लिए कष्ट दुख के अंदर डूबते उतरते हैं। और क्या बोल रहे हैं? वैष्णव सेवा ना कर जन की हबे तहार गति, जो वैष्णव सेवा नहीं करता है उनका क्या दुर्गति होगा? हैं, सब समय तो अपने खून के रिश्तेओं में ब्लड रिलेशन में रमे हुए हैं, किंतु गॉड रिलेशन में तो आता नहीं, तो उसका क्या दुर्गति होगा? इसलिए हम लोग आज तन मन वचन से कृष्ण सेवा हरिगुरु वैष्णव की सेवा में जुट जाएंगे। क्या काम आएगा ये तन? जितना हो सके, नहीं कर सकते हैं बैठ बैठ करेंगे श्रवण करेंगे, कथा हरिनाम करेंगे, यही हमारे लिए निश्चित सार्थक होगा। और गुरु कृपा, मेरे पास कुछ संपत्ति नहीं है, मैं दिन ही नकिंचन कांगाल यदि कहूँ तब भी मेरे अंदर योग्यता नहीं। क्यों? मैं तो हो नहीं पाया, बहुत अभिमान है, घमंडी पाखंडी हूँ, दुराचारी हूँ, तब भी महाराज कृपा करके कौन से जंगल के कीड़े को उठा करके ले आए, क्या नरक का यातना भोगता था, उठा करके आज सेवा का सुयोग दिए हैं। तो मैं भी महाप्रभु महाराज जी के कुछ मनोभीष्ट सेवा कर सकूं, आज सभी वैष्णव से मैं प्रार्थना करता हूं, हैं सभी वैष्णव जन मुझे कृपा करें। अब पुण्य प्रभु कुछ कथा कीर्तन कर देंगे अंग्रेजी में, और इसके बाद हमारा कथा चलेगा। वंशा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधु भय वच पैतानंग पावन को, हाँ नवदीप बाद में बोलेंगे, आप बोल दो।
Both, but because why don't you all come near? We don't need mic for everyone. I was not together while listening, so I could not follow the whole thing. We don't need this. Why? Just few people, 4 or 5. So whatever I remember, I'll speak. So I know I'll be missing so many things, so you will have to forgive me for that. So Prabhuji have explained these 2-3 verses. We are just 4 people, we don't want.
Main bolte bolte theek ho jata.
Spoke these 2-3 verses, so whatever I remember, I'll speak. First verse he spoke is आजानुलंबित भुजौ कनका वदातौ संकीर्तने कपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युग धर्म पालौ वंदे जगत प्रिय करौ करुणा। चार से लोग
हैं।
सो इन दिस वर्स ऑफ कोर्स प्रभुजी वेंट वेरी डीप एंड ही यूज्ड ऑल द वर्ड्स एंड स्पेलिंग्स एज सूत्रस, and he went on explaining all those sutras in extreme depth, and one by one he took all the words. I remember this one thing, Kamalayataksho. So here, as in how whatever I'll remember, I'll speak. So Kamalayataksho, here in this verse, in one word, Mahaprabhu's eyes are compared as lotus flower, Kamalayataksho. Why? Because the lotus flower is very fragrant, it's very soft and snigdha. How you say snigdha?
Soft.
Soft, okay. So these are the qualities of lotus flower. Not only this, because it has all the qualities, so this lotus flower attracts everyone. Akarshan. It has that power. Everyone likes to see lotus flower. But this worldly lotus flower does not stay long. After a while it
no.
Yeah. But Mahaprabhu's eyes are not like that. He has that love in his eyes. He has that mercy in his eyes, which attracts everyone. Which attracts even the living entities like us who are so fallen, who cannot appreciate the beauty of that lotus flower. Still, they are even also benefited, and they are also attracted to this wonderful eyes of Mahaprabhu. And with this, with his wonderful glances, merciful glances, he rejuvenates that strength, that love in the hearts of all the jivas. And then they start chanting Hare Krishna. What is this chanting Hare Krishna? This is their Savrupa Dharma. This is their original position. This is they should do. No one else has that power to wake up, to awaken this this tendency, this natural tendency of the jiva. And unless this tendency is awakened, we are always roaming here and there. We try to go to so many different places to satisfy ourselves by karma, jnana, yoga and so many other things. But we are never satisfied. We are never content. Why? Because our natural constitutional position, we are not able to attain that. So by Mahaprabhu's mercy, we can have that. That's why he has come here. So that was one. Then he went on explaining this Yuga Dharma Palo, that Mahaprabhu has come to establish religion also. Yuga Dharma Palo. What is the dharma of this age? That is Nama Dharma. He explained this word by giving one very nice story of Kurukshetra Dham. When King Puru, Maharaj Puru, Kuru, he was making that Kurukshetra as sacrificial place, Jagya Bhumi. He wanted to make that. So in order to do that, he had to clear the whole area of that ground and make it so clean that there are not, should not be any stones or even little stones. It should be fully clear. So he was himself plowing the field and then clearing it. So when he was doing that, then Indra came and approached him and asked, Maharaj, what are you doing? And Maharaj Kuru, he very politely said, I'm making Yagya Bhumi, sacrificial place. And Indra went back, and after 5 minutes he came again. He said, Maharaj, what are you doing? He said, I'm making Yagya Bhumi, very softly, very nicely, without getting irritated. He was doing such a big work. And then Indra went back, and after 10 minutes he came again. Maharaj, what are you doing? So I'm making Yagya Bhumi. So like this, Indra came 100 times to Maharaj Guru and asked the same question, what are you doing? But Maharaj Guru, because he knew that I'm going for a big task. I have such a big plan in my heart to make this place a Yagya Bhumi. That means it is not ordinary thing. It is very special thing. It's something of a very high caliber. So if he gets irritated or he becomes angry, then what happens? He loses all his austerity, he loses all his bhajan. So Prabhuji was saying here that that's what happens. Any sadhaka, at any point of time, due to any reason, if he becomes angry, then what happens? He loses all his tapasya, all his sadhan, bhajan, whatever he has done. But Maharaj Guru was knowing this, so he was very cool. Said, no, I'm not going to do that. On the other hand, Indra, he's very jealous of his position. He knew if Maharaj Guru is able to accomplish his task, then what will happen? His position will be gone. So here in this world also, all these people who are big people and these politicians and big businessmen are like this. And also Indra is like that. They're very afraid of their position. So somehow or another, they want to make their position, keep up their position. So Indra came again, but then when he came so many times and he saw that Maharaj Guru is not at all disturbed, he's still very strong and steady and fixed. Oh, that means he is a real person. And if I trouble him anymore, then what will happen? So then King Indra, sorry, then Indra, he became afraid. He said, he thought, oh, he's real sadhaka. And if I trouble him anymore, and then I'll get cursed. And if I get cursed, I'm completely doomed. So he came back to his senses, and then he paid obeisances, pranam, and he went back quietly. And Maharaj Guru, he accomplished his task, and after clearing and doing all the necessary things which were supposed to be done after following the whole process, Dharmaraj himself appeared on the place. And he was very pleased with Maharaj Guru. And then he said, this place is now Dharma Bhumi, Dharma Chitra. So anyone who comes in this place and even touch the dust of this place, then definitely, 100%, surely, this person's heart will become completely pure and Dharma will awaken in his heart. So similarly, Mahaprabhu here is also making Yajna place. What is that Yajna place? He's making these ears as Yajna place. And what are those offerings? The offerings are of Harinam. So this tongue is like spoon. And the feeling and affection and love in our heart, that's like ghee. So mixed with this ghee, this offering, every moment we offer in this Yajna Kund and make this Yajna Kund as Dharma Bhumi. So when this place becomes completely Dharma Bhumi, then that means we got the mercy of Mahaprabhu. Then we let Mahaprabhu win us. That's why at the end of every verse he's saying Jayati. Jai Ho. How do you say in English?
All victory.
All victory to the Lord. But is it a blessings to the Lord we are giving? Are we giving blessings to the Lord? All victory will be yours. He needs our blessings. He's already all powerful. But he's not won my heart. I'm still not conquered by him or by his qualities. I'm still conquered by my qualities, by the qualities of this material world. So he's not one. So I'm telling you, maybe, but unless you win me over, how can I understand your glories? So he's telling again and again, win me also. He's offering himself completely, surrendering at the feet and saying, please win my heart also. And then another way, when we get the blessings from our elder, senior Guru and Vaishnavas, they say, oh, Jai Ho, you have all the victory. What does it mean then? That it means that they're saying, oh, now you become qualified. Now by your serving tendency, by your qualities of submission, by your determination, you have won me over. I have defeated with your love. So it has both meanings. So these are also very nice different explanations which Prabhuji gave. And Vishwambharav means he is the Ishwar of this world. No one else. Who is keeping everyone together? No one has this power other than Mahaprabhu. Everyone is trying at their level. Somebody is trying to just collect their senses together. Somebody is trying to collect his mind at his level. Then lift it up. Somebody is trying to collect family together. Then the governments are trying to keep everyone together, but nobody wants to stay together. But what is happening in Mayapur? If we go today, we see everyone, Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra, regardless of their caste and creed, which is so strong in India. Brahmanas, they don't want even to see the Shudras. But there in Mayapur today, all from all these different, even those called scheduled tribes and scheduled castes, and also Christians, Indians, Muslims, everyone is together and they're chanting Hari. So who has that power? Only Mahaprabhu. That's why who is he? Vishwambharav. So these are the meanings. Then Ajanulambit Bhujo. Hands are so, arms are so high and long. Everywhere in the entire universe, wherever you see, Mahaprabhu's arms blessing everyone. So Ajanulambit Bhujo. So he's again praying for the shelter of such wonderful hands and arms of Mahaprabhu, that I may stay under that shelter forever and forever. So that was one verse. He spoke many more things, but I forget in this verse.
Ajanulambita Bhujo literally means
reach down to the knees. But he was saying that, no. He was saying that it means that with those hands he'll reach out and he'll take us on his lap, and then he'll, you know, give us affection.
Yeah, that also.
Prabhuji, who's written this shlok?
Is this Chaitanya Bhagavan?
Yeah.
Yes.
Bhagavadas Thakur?
Yeah.
Hero. So we'll read next verse. Namaste.
Why didn't you explain what he was saying about Mahaprabhu's sons?
Yes.
Oh, yeah.
They sing this verse. Namaste Kala Satyaya Jagannath Sutaya Cha Sa Prithyaya Sa Putraya Sa Kalatraya Te Namah. So in this verse, first word is Namaste Kala. Trikala. What is Trikala? Past, present and future. Three times. But he says, Namaste Kala Satyaya, that Mahaprabhu is not truth of this material world. It's absolute truth. Right? Satya. Paramasatya. So, Namaste Kala Satya. It's not that he only comes in Kali Yuga, or he's only performs his pastime in this Kali Yuga. No, not like that. He's performing his pastimes in all the three Kalas times. That means present, every time present, at all times. That is Namaste Kala Satya. So, a few more things. Not sure, very clear. Jagannath Sutaya Cha, and he is son of Jagannath Mishra. Though he is Supreme Lord, but he is playing these wonderful pastimes. And with his wonderful pastimes, he is stealing the hearts and minds of his all devotees. Forever, eternally he's doing that. Not just in this age, he's doing it eternally. So he's paying his obeisances to Jagannath also, in Jagannath Mishra in this verse. Then he's saying, Sabitraya, that means to all the servants of Mahaprabhu. Das, Das, Anudas. Everyone. All the followers of Mahaprabhu. He's praying to all the followers of Mahaprabhu. Why? Because they're so fortunate. Lord is playing with them. He is having so much wonderful exchanges with them. So they are not ordinary. All the followers of Mahaprabhu. And Prabhupada is explaining how when Mahaprabhu sometimes he used to avish.
Complete absorption.
No, he used to enter in one of his, like,
an appearance.
Huh?
An appearance.
Okay. I don't know. So he used to, I forget the name of devotee, one devotee Prabhuji spoke. One Brahmachari.
Nakul.
Like that. So possessed. Like that. Why? Because he had so much nice qualities. So all these servants of Mahaprabhu, because they have these qualities, so Mahaprabhu is having these wonderful pastimes, and he's giving chance even to those also, those who don't have any qualities. Those who are completely fallen. So Mahaprabhu is giving mercy to them also. But those who are qualified, what fortune they have, that Mahaprabhu himself enters into them. And does how and whichever way he likes to make them run or dance like that. Then Saputraya. So here is Putra to all the sons of Mahaprabhu. So Mahaprabhu had sons. He was sannyasi. He did not have any sons. So how Putraya? So here Prabhuji gave two meanings of the word Putraya. Putra generally in this world means one who rescues the father or forefathers from the hell called Pun Namak Naraka. So he rescues the forefathers from them. That's why he's Putra. Any son who is not like this, who is not able to rescue his forefathers from going in the hell, then he's not Putra. But here, in Mahaprabhu's case, this Putraya means different. But also means maintainer, one who nourishes, Palan Karta. So one who nourishes, he's also Putraya. So Mahaprabhu here, he is nourishing, he is maintaining
everyone, especially his devotees. Who? In general sense, everyone is his son. General sense. But especially those who have completely surrendered themselves to Mahaprabhu. So Mahaprabhu is now looking after them. He's caring, taking care of them. And he's nourishing them. That's why they're all his sons. So he's Putra. That is one special meaning of the word Putra. Deena. So he is paying his obeisances to Mahaprabhu in this way. This one he just spoke, Adyo Shri Chaitanya Priya Goshthir Charane Ashesh Prakare Mor Danda Praname. He did not spoke much on this, just he spoke that I bow down to Mahaprabhu in Sashtang Dandavat, he's doing that. But then keeping this word in view, this verse, he spoke some extra things for these people who came from Delhi. That was general, that we are wasting our time and we should do bhajan, and though we are here, we are still thinking of our native places and we are not here. Why? Because we are bound with that rope, the khunta, nail. I don't remember what. That was in the last, whatever I remember is the same.